आयत नंबर 122 से 129 यानी 122 से 129 तक मुश्किल अल्फाज की वजाहत। या बनी इसराइला, ए इसराइल की औलाद, ए बनी इसराइल उज़्कुरू, तुम सब याद करो, जिक्र करना, याद करना। जिक्र कौली भी होता है यानी जबानी भी होता है और अमली भी होता है। नेमती, मेरी नेमत को, अल्लती अनअमतु अलैकुम, अल्लती यहाँ पर आया, अल्लाह जी क्यों नहीं आया? इसलिए कि नेमत, हाँ, इसलिए जरूरी नहीं हर चीज औरत ही हो, है ना। तो मुअन्नस, अल्लाह ती आया इसलिए कि जो चीज जिसका जिक्र हम यहाँ पे कुरान में पढ़ रहे हैं वो फीमेल यानी मुअन्नस है, जैसे नेमत, ठीक है। तो उसके लिए अल्लाह ती आया। अगर मुजक्कर होती तो क्या आता? अल्लाह जी आता। तो यहाँ पे अल्लाह ती आया। अनअमतु अलैकुम, मैंने इनाम किया तुम पर। अनअमतु, तू जो है इसके माने क्या है? मैंने। अगर होता अनअमता, तूने इनाम किया, मर्द के लिए आता। और अगर होता अनअमती, तूने एक औरत ने इनाम किया, ठीक है। तो अनअमतु आई के लिए आता है, तू आई यानी मैं। वो मुजक्कर भी हो सकता है और मुअन्नस भी। अनअमतु अलैकुम, मैंने तुम पर इनाम किया। व अन्नी फद्दलतुकुम, और मैंने तुम्हें जो है वो फजीलत दी। फजल तो आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, इसका रूट वर्ड क्या है? शाबाश, फादुआत लाम। फादुआत लाम जो है इसके मानी क्या है? फौकियत देना, फजीलत देना, बर्तरी देना। अलल आलमीन, दुनिया वालों पर, दुनिया की अकवाम पर। आलमीन, और हमने सूरत फातिहा में पढ़ा था रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल आलमीन और यहाँ पे भी आलमीन है, तो ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। वत्तकू यौमल्ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। वत्तकू, और डरो और बचो उस दिन से जब कोई किसी के काम नहीं आएगा। कोई नफ्स किसी नफ्स को कोई भी जजा नहीं देगा, बदला नहीं देगा, फायदा नहीं देगा। वला युकबलु मिनहा अदलुन, और ना ही किसी से कोई अदल कबूल किया जाएगा। तो अदल यहाँ पे फिदिये के मानी में है, ये पहले आप पढ़ चुकी हैं आयत। वला तनफाउ शफातुन, और ना ही कोई शिफात जो है यानी सिफारिश जो है वो नफा देगी, फायदा देगी। तनफाउ, इसका रूट वर्ड क्या है? शाबाश, नून फा आयन, नफा देना, फायदा देना। और शफात, शीन फा आयन। और शफा के मानी क्या होते हैं? कि एक चीज के साथ दूसरी चीज को मिलाना। जब हम किसी की सिफारिश भी करते हैं तो क्या है कि उसकी राय के साथ अपनी राय को मिलाते हैं, तो चीज जो है वो दो हो जाती है। वला हुम युनसरून, और ना ही कोई जो है वो कहीं से किसी को कोई मदद मिल सकेगी। युनसरून नसर से है। अंसार कौन होते हैं?
मददगार,
मदद करने वाले, मददगार। नुसरत मदद को कहते हैं, यानी किसी को कोई फतह या नुसरत जो है वो मिल जाए। वइज़ तला इब्राहिमा, और जब आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रब्बहू उसके रब ने। तो इब्तला ये जो है आप पहले भी वैसे पढ़ चुकी हैं कि बा लाम वो इसका रूट वर्ड है, या ये भी है कि बा लाम या। इसके मानी है कपड़े का पुराना होना या किसी भी चीज का पुराना होना। जब इंसान पर बला आती है, आजमाइश आती है, तो उसको पुराना करती है ना। आप देखें, बाज आप बड़े खूबसूरत चेहरे को देखते हैं और बहुत दिनों बाद देखते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि आपको क्या हो गया, आपकी रंगत बदल गई, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई। तो वो बताता है फर्क के, जब से जो है वो मेरे ये हालात हुए, खुदा ना खास्ता को घर में डेथ है या एक्सीडेंट है या कोई बीमारी है, तो उसकी वजह से मेरे जो है ना अब ये मेरी हालत हो गई है। तो आजमाइशें इंसानों को पुराना करती हैं, और कोई चीज जो ओल्ड होती है तो वो गोल्ड बन जाती है ना। ओल्ड इज गोल्ड। तो बालाम या बालाम वो, कपड़े का बुसीदा होना, पुराना होना, इसी तरह इंसान का कमजोर होना। तो गम आए या आजमाइश आए तो वो इंसान को कमजोर करते हैं। जैसे बुलोनी भी उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं कि बुलोनी से बुलोना, जब दूध को बुलोया जाता है, दही को बुलोते हैं, तो उससे फिर मक्खन निकल आता है, तो एक चीज हासिल बनता है। तो इब्तला इसके मानी भी क्या है? के आजमाना। और इसके अलावा यानी जो भी आजमाइशें होती हैं वो क्या किस लिए आती हैं, इंसानों की तरबियत के लिए आती हैं, इखलाकी तरबियत के लिए। ये अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह अपने जिन बंदों से प्यार करता है उनको आजमाइशों में मुब्तिला कर देता है, और जब आजमाइशें आती हैं उससे उनकी सलाहियतें उभरती हैं और उससे जो है उनकी जो सलाहियतें होती हैं वो नशो नुमा पाती हैं। और क्या होता है कि इसके जरिए से ये पता चलता है कि कौन खोटा है कौन खरा है। फिर ये जो आजमाइशें हैं ये नरम भी हो सकती हैं सख्त भी हो सकती हैं, ये सर्द भी हो सकती हैं गर्म भी हो सकती हैं, ये सेहत की आजमाइश भी हो सकती है बीमारी की भी हो सकती है, ये दौलत की भी हो सकती है और गुर्बत की भी हो सकती है। तो यानी आजमाइशें जो हैं ये हौसला अफजा भी हो सकती हैं और हिम्मत आजमा भी हो सकती हैं, दोनों तरह की आजमाइशें होती हैं। अल्लाह ताला का आजमाइशें देने का मकसद बंदे को दुख देना नहीं है, लेकिन जब फूल कहाँ पे होते हैं, कांटों में ही होते हैं ना, बुलंदी पे चढ़ने के लिए मुशक्कत तो करनी ही पड़ती है। तो ये है आजमाइशों का मकसद कि लोगों की सलाहियतों को उभारा जाए, उनको परवान चढ़ाया जाए और उसको जो है वो तरक्की के जीने जो है वो तय करवाए जाए। रब्बहू उसके रब ने, अब यहां पे देखें एक बात आप याद रखें कि इब्राहीम मा, और कहीं के इब्राहीम मुंह भी आएगा, तो जब फाइल के आखिरी हरफ पर फतहा होती है जबर होती है ना, तो उसका ये मतलब होता है कि वो काम करने वाला है, फाइल है। जैसे रब्बू रब ने, इब्राहीमा इब्राहीम को, बस आप ये याद रखें। मसलन आप यूं भी कह सकती हैं कि खालिद ने हामिद को मारा, दरबा खालिदू हामिदन, तो मारने वाला जो है ना उसके ऊपर पेश आएगी, जिसको मारा जा रहा है उस पर जबर आएगी, तो जिस पर काम किया जा रहा होता है ना उस पर फतह आती है, हरकत आती है। ये एक नुक्ता है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो बस ऐसे ही समझिएगा कि एक इंफॉर्मेशन थी, इसको पास करते हुए आगे चले जाइएगा। और मैं इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा थोड़ा तर्जमे का ट्रिक आना शुरू हो जाए, तर्जमे की सूझबूझ मिलनी शुरू हो जाए। तो ये भी तो हो सकता है ना, इब्राहिम ने आजमाया, लेकिन चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आखिरी जो मीम का हरफ है उस पर हरकत है फतह की, तो रब ने आजमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। जब इस तरह जबर आती है ना तो फिर को का तर्जमा होता है, और जिस पर पेश होती है उसके साथ ने आता है, ठीक है। रब्बहू बिकलिमातिन, तो कलिमात जो है ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं, काफ लाम मीम, इसके मानी जख्म लगाना भी है, और ये जो हम अल्फाज बोलते हैं जो कलमात हैं उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और ये वाहिद को भी कहते हैं और इसके साथ ये जमा को भी कहते हैं, यानी एक भी बात कलमा हो सकती है कलमात और पूरी बात भी। तो यहाँ कलमात से मुराद वो अहकामात हैं, वो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स हैं जो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस्तकामत का इम्तहान लेने के लिए उनको दिए थे। अल्लाह ताला ने कुछ काम कहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनका इम्तहान लेने के लिए, उनकी इस्तकामत का, उनके सबर का, उनके ईमान का, तो यहाँ पे कलमात से मुराद वो है। फातम्माहुन कहने को बहुत छोटा सा है लेकिन इसके अंदर मानी की एक दुनिया है। फा फिर के अंदर कहानियों पे कहानियां हैं कि क्या क्या वो कलमात थे। अतम्माहुन, तो अतम जो है इसका रूट वर्ड क्या है कि ता मीम नीम, तम ता मीम मीम, इसके मानी है पूरा करना, पूरा होना, पूरा करना, किसी चीज का इस हद तक पहुंच जाना जिसके बाद किसी और चीज की जरूरत ना रहे, बाकी जरूरत ही नहीं रही। जैसे एक होता है ना नक्स, नक्स होता है, इसका ऑपोजिट तम्मा का नक्स है। नक्स के अंदर कमी होती है ना, मसलन आप खाना खाती हैं, खाना पकाती हैं, बिरयानी को दम देती हैं, आप कहती हैं कि बिरयानी मुकम्मल तो हो गई, पक गई, लेकिन इसके अंदर ना ये चावल थोड़े से सख्त रह गए हैं, नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया है या कम हो गया है, थोड़े गीले रह गए हैं चावल, तो इसके अंदर नक्स है। अगर वो बहुत अच्छी परफेक्ट हो तो तम्मा है, और अगर वो नहीं सही पकी हुई किसी लिहाज से तो वो फिर नक्स है उसके अंदर। इसका मानी क्या है कि किसी चीज को पूरा करना और ना तमाम चीज को पाया तकमील तक पहुंचाना, किसी ना किस चीज को ऐसे उसको अंजाम देना कि उसका नुक्स खत्म हो जाए। ये अमूमन गिनती, मिकदार, मुद्दत को पूरा करने के लिए भी आता है, जैसे काउंटिंग के लिए कभी जो है ये, जैसे किसी ड्यूरेशन के लिए भी ये लफ्ज है तम्मा, मुकम्मल करने का इस्तेमाल होता है। तो हुन्ना की जमीर किसके लिए आई है? कलिमात, कलिमात मुअन्नस है ना, है ना, जमा है और यहाँ पे मुअन्नस है, तो हुन्ना भी जमा है। हा भी आ सकता था ना, लेकिन हुन्ना, अगर मुजक्कर चीज होती तो हुम आ जाता, तो यहाँ पे हुन्ना आ गया। फातम्मा हुन्ना, यानी उन तमाम को में वो पूरा उतर गए, उन तमाम को पूरा किया, नक्स के साथ नहीं, जो उसने खूबी उनको पूरा किया। قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, कहा अल्लाह ताला ने कि बेशक मैं बनाने वाला हूं तुझको लोगों के लिए इमाम। जाइलु का रूटवर्ड क्या है? शाबाश, जी माइलाम बनाना। लिन्नासी, इसका रूटवर्ड क्या है? अलिफ नून सीन और दूसरा, शाबाश माशाल्लाह। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपकी और बढ़ाए मेहनत को भी और आपकी कोशिशों को भी, और अल्लाह ताला आपको तकवा की इमामत पर जो है वो कायम करें। आगे है इमामा, तो इमामा जो है इसका रूटवर्ड वही है मां वाला, अलिफ मीम मीम, इसके मानी मां के भी होते हैं, इमाम के भी होते हैं, सरदार के भी होते हैं और रास्ते के भी होते हैं। और जैसे माँ जो होती है, क्या है कि जैसे जड़ है, बुनियाद है ना, बड़ी कीमती चीज होती है माँ, और माँ कितनी कीमती चीज है, कुरान से भी इसका अंदाजा होता है और हदीस से भी होता है। और मैं अक्सर इस बात पे सोचती हूँ कि माँ को कैसे बयान किया जाए कि माँ क्या है, तो मैं कहती हूँ कभी सितारों की चमक देखी, फिर सोचती हूँ नहीं ये जो आबशारें बहती हैं इनमें से जो पानी के झरने आते हैं तो उनके अंदर भी एक रिदम होता है, तो कभी उससे सोचती हूँ, फिर मैं कहती हूँ नहीं ये जो खुशबू होती है जब फूल खिलते हैं और वो कितने प्यारे लगते हैं, उनसे खुशबू निकलती है, क्या वो उसको हम माँ से मिसाल दे सकते हैं? फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, कभी कभी बहुत ही कोई ठंडी मीठी अच्छी चीज नजर आती है, मिलती है, महसूस करती, फिर सोचती हूँ छट किया ये इसको माँ से हम बयान कर सकते हैं, है ना। तो अगर कहीं कोई बहुत हसीन चीज हो तो फिर सोचती हूँ कि या माँ उसको कह सकते हैं, उनसे उसको ताबीर कर सकते हैं। तो माँ क्या होती है कि उल्फत है, मोहब्बत है और नरमी है, शफकत है, प्यार है, तमाम प्यार का मजमुआ है, और एक तड़प है, एक जज्बा है, एक शौक है, एक अजीब चीज है ना माँ, है ना, तो बड़ी खूबसूरत चीज है। तो असल में वो भी कायद की तरह होती है, लीडर की तरह होती है। माँ भी अपने बच्चों को बहुत कुछ चाहती है वो बन जाए, तो इसी तरह जो इमाम मस्जिद में इमामत करवाता है तो वो भी कायद है, वो भी लीडर है, वो भी माँ की तरह जैसे उसका मकाम है ना, सरदार। इसी तरह जो है वो इमाम की जमा आयमा, इसी तरह उम्मुल किताब, किताब की माँ, है ना। तो ये सब चीजें क्या हैं कि एक जैसे असल से चीज को रोशनास कराती हैं। तो लोगों का इमाम बनाना, सरदार बनाना, पेशवा बनाना। काला, कहा वमिन जुर्रियाती, और मेरी औलाद भी, जुर्रियाती ये एक नया लफ्ज है और इसके जो है वो दो मादे हैं। बाज़ लोग कहते हैं इसका मादा है जा रा रा, ठीक है, जुर से है, इसके मानी है छोटी चूंटियां, छोटी औलाद, फिर सब औलाद पर इसका इतलाक होने लगा, यानी हर तरह की औलाद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा जुर्रियत लफ्ज को। और इसी के अंदर जो है वो जो पूरी नस्ल जनरेशन होती है उसको भी जुर्रियत कहते हैं, जिसमें पोते, नवासे, नवासियां और सारे आ जाते हैं। दूसरा कहते हैं कि इसका मादा है जाल रा हमजा, इसका रूट क्या है जाल रा हमजा, इसके मानी है स्प्रेड आउट करना, फैलाना, हर वो चीज जो बोई जा सके और खेती की जा सके उसके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और यानी और इसी से जो है आप देखें कि जर्रा जर्रा, छोटी छोटी चीज को कहते हैं ना, اور ذرے کیا ہوتے ہیں؟ ہر طرف بکھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ذریت اولاد. تو آپ دیکھیں کہ حقیر کے پانی کے نطفے سے, حقیر سے پانی کے نطفے سے کیسے ذرات نکلتے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پذیرائی دیتے ہیں, اس کو قبول کرتے ہیں کہ پھر انسانوں کی نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ دنیا میں بکھری پڑی ہیں. قال لا ینالو, کہا کہ نہیں پہنچتا. ینالو, ینالو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون یا لام, کسی چیز تک پہنچنا یا اس کو حاصل کرنا جس کی انسان جو ہے وہ خواہش رکھتا ہو. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ورڈ روٹ ورڈ نون یا لام کے ساتھ ساتھ نون واو لام بھی ہے. روٹ ورڈ کے لیے جو عربی کی ڈکشنریز ہیں نا, ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے. الموجد ہے, قاموس الفرید ہے, مفردات القرآن ہے, مترادفات القرآن ہے, اور بھی بہت سی. تو بعض میں جن میں حروف علت آتا ہے نا, بعض کے روٹ ورڈ میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ملتا ہے, بعض اوقات ایک کی بجائے دو بھی مل جاتے ہیں. تو نون وہ لام ہے یا نون یا لام ہے, دونوں کے معنی میں کیا ہے؟ پہنچنا, حاصل کرنا. اسی سے جو ہے وہ نیلا بھی ہے, نون یا لام کا نیلا, مطلوبہ چیز تک پہنچنا, جو بھی چیز انسان چاہتا ہے نا اس تک پہنچ جانا, تو اس کے لیے ہے. قال لا ينال عهد الظالمين, کہا کہ میرا وعدہ جو ہے وہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے. عهدی دال کے بعد جو یا ہے نا میرے معنی میں ہے, اور ظالمین کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ظالمین, ظلم سے ہے, حق تلفی کرنا. اور یا نون جو آخر میں ہے نا ظالمین, یہ جمع کے لیے ہے, اور کبھی ظالمون بھی آتا ہے. وہ نون جب آتا ہے وہ بھی جمع کے لیے ہوتا ہے, یا نون جب آتا ہے یہ بھی جمع کے لیے ہوتا ہے. جمع کے لیے دو نشانیاں آپ نے یاد رکھنی ہیں, یا نون یا وہ نون. اور یا نون یا وہ نون سے پہلے جو لفظ ہے نا اس کے نیچے زیر آتی ہے, ظالمین, میم کے نیچے زیر ہے. اگر ہوتا ظالمین, دو ظلم کرنے والے, یہ یاد رکھیں, میم کے اوپر اگر فتح ہوتی, زبر ہوتی ظالمین, تو دو ظلم کرنے والے. بحرین, دو سمندر جہاں ملتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی اس کا تسنیہ کی کیا نشانی ہے, دو کے لیے کیا نشانی ہے, الف نون اور یا نون. الف نون تو آپ کو بڑی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے نا, اس میں آپ کو مشکل نہیں لگتا, جیسے کل اور کلان, دو کھانے والے, ہے نا. ادخل اور ادخلان, یہ امر میں ہے دو کا صیغہ, لیکن دخلا اور دخلان, دو داخل ہونے والے, اور دخلین, لام کے اوپر زبر آ رہی ہے, دخلین. اگر لام کے نیچے زیر آئے گی تو جمع بن جائے گا. ایک حرکت سے کیا ہوتا ہے, یا ایک نقطے سے کیا ہوتا ہے, کہ محرم سے مجرم بن جاتے ہیں اور مجرم سے محرم بن جاتے ہیں, ہے نا. تو تجوید میں آپ خوب اس بات کو بھی سمجھ رہی ہیں کہ حرکات کا فرق یا نقطوں کا فرق جو ہے وہ الفاظ میں جو ہے وہ کیا کرتا ہے, تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. جو ہے وہ عالم اور عالم, عالم کیا ہے؟ علم رکھنے والا, اسکالر. اور عالم کیا ہے؟ دنیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے اور جو ہے وہ وہاں پہ کیچڑ تھا, گارا تھا, تو کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ سنبھل کے چلیے گا کہ آپ کا جو پھسلنا ہے ایک عالم کا پھسلنا ہے. یعنی آپ پھسل گئے تو ایک دنیا پھسلی گویا کہ. امام کی غلطی ایک دنیا کی غلطی ہے, استاد کی غلطی بہت سے لوگوں کی غلطی بن سکتی ہے, والدین کی غلطی نسلوں کی غلطی ہو سکتی ہے. تو یہ جو مقام ہے نا, یہ بہت اہم اور نازک ہے. یہ کرسی بڑی مشکل ہے, نرمی اور اس کے جو ہوتی ہے سیٹ, اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, ویسے یہ بڑی سخت کرسی ہے نا. تو لا ینالو عهد الظالمین, کہ میرا یہ وعدہ جو ہے وہ ظالموں کو نہیں پہنچا کرتا, ان کو نہیں ملا کرتا. وہ خواہش بھی رکھیں اس کو حاصل نہیں کر سکتے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ, اور جب ہم نے بنایا بیت, البیت, باتا یبیتو, رات گزارنا. اور میں نے بتایا تھا کہ بیت جو ہے ایسے گھر کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر رات گزاری جا سکے, ہے نا. ایک ہوتا ہے ہاؤس, ہاؤس کے لیے ہے دار. ایک ہوتا ہے ہوم, ہوم ہوتا ہے بیت, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ بھی بیت گھر کے لیے ہے کہ جب ہم نے بنایا بیت. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ سامنے آج بورڈ پر بھی ہم نے خانہ کعبہ کی तस्वीरें आपके लिए लगाई हैं कि आप देखें भी, चूंकि इसका आज हमारा इससे मुतल्लिक ही आज कई आयात हैं कि अल्लाह का घर के लिए यहाँ पर, वैसे अलबैत है, बैत को आम भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे अल्लाह का घर है। मसाबतन ये आप पहले पढ़ चुकी हैं, बहुत अहम लफ्ज है, और आपको बताएं इसका रूट वर्ड याद हुआ कि नहीं हुआ, सावोबा मानी याद हुए कि नहीं, सवाब और पलटना। आप ना, मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि जब याद करें रटे भी, लेकिन रटने से ज्यादा समझें, लिंक कायम करेंगे किसी चीज का, किससे क्या लिंक है, कैसे याद करूं मैं उसको ना, सोचें, कोई उसकी निशानी रख लें, और कोई आपको अच्छी निशानी पता चले अपने क्लास फेलो के साथ भी शेयर करें कि ये चीज बड़ी मुश्किल लग रही थी, बस ऐसे किया तो मुझे याद हो गई। तो मसाबा, मसाबा सा वो बा, किसी चीज का अपनी असली हालत की तरफ लौट आना, तो इसी से सवाब भी है कि क्या है कि जब कोई शख्स अच्छा काम करता है तो फिर उसकी जजा उसकी तरफ लौटती है, उसकी तरफ आती है। इसी तरह जो है कोई अपने घर की तरफ लौट आए तो उसको भी कहते हैं, यानी मसाबा जो है वो घर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों घर के लिए मसाबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए कि घर की तरफ हम कहीं भी चले जाएं लौट के घर की तरफ आते हैं। कोई माँ बेटी के घर आए, उसके दामाद डॉक्टर हो, वो बेटे के घर आए, बेटा डॉक्टर हो, बहू भी डॉक्टर हो, दुनिया जहान की नेमतें हों, सारी सहूलतें हों, लेकिन जब इंसान अपने घर आता है तो कहता है भी बड़ा सुकून मिल रहा है ना, अपने घर की बात ही क्या है ना। तो एक ये कि अपना घर हो या बेटी या बेटे का घर हो, कोई भी जो घर हो उसकी तरफ हम लौट लौट कर जाते हैं, ग्रोसरी करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, कहीं भी जा रहे हो, लेकिन लौट कर इंसान कहाँ आता है, घर की तरफ आता है ना, घर की तरफ लौटना। तो ऐसी चीज जिसकी तरफ रुजू किया जाए, लौटा जाए। इसी तरह जो है वो कुएं के मुंह पर पानी बना लेने के लिए एक मंडेर सी बनी होती है, अगर आपने कभी कुआं देखा हो, है ना, ट्यूबवेल देखे हो जहां पानी जिनसे निकलता है, या कुएं जहां पे पहले जमाने में देहाती लोग अपना पानी खींचने के लिए जाते थे, और फिर कौमे समूद का भी एक कुआं था, है ना, है ना। तो और जब आप इस्लाम की हिस्ट्री पढ़े तो वहां पे भी कुएं नजर आते हैं कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ने भी एक कुआं जो था वो खरीद कर जो था वो वक्फ कर दिया था मुसलमानों के लिए, मीठे पानी का, बड़ी हजारों दिरहम उसकी कीमत थी, है ना। तो कुआं जब होता है उसके इर्द गिर्द एक मंडेर सी बनी हुई होती है, बाउंड्री सी होती है, जिसकी वजह से लोग उसमें गिर ना जाएं, और एक ऐसी जगह बनाई होती है जिसकी तरफ से लोग खींच कर पानी निकाल सकते थे। तो कुएं के लिए भी ये लफ्ज जो है उस जगह जहां से लोग पानी पानी लेने के लिए, पानी पिलाने के लिए जो मंडेर बनाई जाती है उसको भी मसाबा कहते हैं। अच्छा क्यों? इसलिए कि पानी लेने के लिए भी सुबह शाम लोग जाते हैं, दिन और रात जाते थे उस जमाने में, है ना, तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो पानी पीने और ले जाने के लिए ऐसी जगह जहां लोग बार बार जमा हो तो मसाबा है। तो एक तो है आम पानी, और मसाबा अल्लाह ताला ने अपने घर को कहा यहाँ पे, इसलिए कि वहां भी लोग प्यास बुझाने के लिए आते हैं। जब हम आम पानी लेते हैं तो हमारी प्यास बुझती है, जो हमें प्यास लगी हुई होती है, लेकिन ये रूहानी प्यास बुझाने के लिए भी मस्जिदें, इबादत गाहें, खाना काबा जो है, इससे भी प्यास बुझती है ना। यहाँ पे तौहीद मिलती है, दिलों को सुकून मिलता है, रूह को सुरूर मिलता है, हदायत मिलती है। तो क्या है कि मसाबत लिन्नासी, के लोगों के लिए सेंटर, लोगों के लिए ऐसी जगह जहां लोग पलट पलट कर आए। मसाबा की समझ आ गई आप लोगों को? क्योंकि मसाबा मस्जिद को भी कहा जा रहा है, और सवाब को भी कहा जा रहा है, और सौब कपड़े को भी कहा जा रहा है। सौब कपड़ा भी है, आप इसका रूट वर्ड भी पढ़ चुकी। तो कपड़ा क्या होता है? कपड़ा इंसान की तरफ ही पलट कर आता है ना। कपड़े का असल मकाम क्या है? कि वो इंसान की तरफ पलट कर आता है, कि इंसान उसको पहनता है। अरबी जबान में सौब कपड़े को भी कहते हैं। तो आप उसका लिंक बना लिया करें, जब आपको रूट वर्ड पता चल जाए और पता चले कि फलां फलां के लिए भी ये इस्तेमाल हुआ, तो जब लिंक कायम करेंगे तो आपको वो इंशाल्लाह याद ना रहेगा बल्कि बहुत अच्छा याद रहेगा। तो रटने की बजाय समझने पे जोर दें। मसाबत लिन्नासी, अब मसाबा में आप देखें यहां वो आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन रूट वर्ड क्या है इसका? सा वो बा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वो अलिफिया तीन हरूफ है जो अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे वो नजर तो नहीं आ रहा लेकिन है वैसे, ठीक है, इसके रूट वर्ड में वो है। लिन्नासी लोगों के लिए, वह अमना और अमन, अमन पीस को कहते हैं। ईमान का रूट वर्ड भी अमन है ना। ईमान जब इंसान ले आता है, मोमिन बन जाता है, तो अमन ही अमन है घर में भी और बाहर भी। वत्ता खिजू और बना लो और पकड़ लो, अखज करना से है, मिन मकाम में मकाम, मकाम का रूटवर्ड क्या है, कौम से है, काफ व मीम कौम से, और युकी मूना उसका रूटवर्ड क्या है, काफ व मीम उसका भी यही रूटवर्ड है और मकामा का भी यही रूटवर्ड है। तो असल में कामा यकूमू जो है ये इसम जर्फ से है, खड़ा होने की जगह। एक होता है ना कौम जो खड़ी हुई है, लेकिन खड़ा होने की जगह इसम जर्फ है, तो उसके लिए लफ्ज मकामा का इस्तेमाल किया जाता है। इब्राहिमा इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुसल्ला मुसल्ला के लिए, मुसल्ला का रूट वर्ड क्या है, स्वाद लाम वो, शाबाश स्वाद लाम वो, ये भी इसम जर्फ से है। नमाज पढ़ने की जगह, नमाज पढ़ने की जगह को मुसल्ला कहते हैं। और इसी तरह सलात का रूट वर्ड क्या है, स्वाद लाम वो, यही तो है ना। तो नमाज का भी यही है, और जो मुसल्ला, बाद लोग मसाजिद को ही मसल्ला कहते हैं, और वरना जो हम जाय नमाज बिछाते हैं उसको भी मसल्ला कहते हैं, है ना। तो ये किसका रूट वर्ड, आहिदना, अहद के बारे में आप पहले पढ़ी चुकी हैं कि इसे मुराद जो है वो क्या है, इला की हमने बात खास तौर पर पढ़नी है कि जब अहद के साथ इला की प्रेपोजिशन आए, इला का सिला आ जाए और ये इला आ जाए इसको हुरू, तो क्या होता है कि इसके माने होते हैं किसी पर जिम्मेदारी डालना, किसी को किसी शर्त का पाबंद करना, किसी को ताकीद करना, ठीक है। अहद के साथ जब इला आ जाए, वाहिदना इला इब्राहिमा व इस्माइला, और हमने अहद, हमने पाबंद किया और हमने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को। अब आप इसके तर्जे में अहद करने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्यों, इला आ गया साथ ना, किस चीज का पाबंद किया, अन त्वाहिरानी, त्वाहिरानी नून भी था यहाँ पे और ये गिर गया है, और नून होने का मतलब क्या है, तस्निया है दो, ठीक है। और इसका रूट वर्ड है तोहर, तोए हा और रा, इसके मानी है जाहरी या बातनी तौर पर पाक करना, तहारत भी इसी से है, तहारत ताहिर तोहर, यानी बीवी से ताल्लुक तोहर की हालत में कायम होना चाहिए, हैज में नहीं होना चाहिए, तोहर है, तहारत है, ताहिर है, तो ये सारे इसकी फैमिली के वर्ड हैं। अंतवाहिर रानी, नून गिर गया और अलिफ बता रहा है कि दो की बात हो रही है, ठीक है। और दो कौन है यहाँ पे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जरा जागते रहिए आप लोग। दैतिया मेरे घर को, और यहाँ पे अल्लाह ताला ने किस घर को अपना घर कहा है, खाना काबा को, जिसकी आपको यहाँ पे इस वक्त तस्वीरें भी नजर आ रही है। लित्वाइफीना, इसका रूटवर्ड है तौफ से है, तौफ फिरना घूमना चक्कर लगाना, किसी चीज का दूसरी चीज के गिर्द घूमना। खाना कहवा में आप जाती हैं, आप कहती हैं आप हज उम्रे, हज कितने लोगों ने किया आप में से, माशाल्लाह बहुत, तकरीबन पूरी क्लास ने। और उम्रा कितने लोगों ने किया है, माशाल्लाह ये भी कसीर लोगों ने किया है। तो वहां पे आपने मुताफ लफ्ज सुना होगा कि मुताफ के पास दुआ कबूल होती है, तो वही जगह जहां पे आप तवाफ करते हैं, तो वहां पे आपको नजर आती है ना बाउंड्री सी, तो वहां पे आप दो रकत जो है वो नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, तो मुताफ जो है ये चक्कर लगाने की जगह को भी कहते हैं, जो इर्द गिर्द का इलाका है। तो तवाफ करना, किसी चीज के गिर्द जो है वो चक्कर लगाना। फिर है वल आकिफीना, इसका रूट वर्ड है आयन का फा, ताजीमन किसी जगह पर ठहरना। वैसे ही एक तो होता है ना ठहरना, लेकिन ताजीम के साथ किसी जगह पर इरादे से रुकना, इज्जत के साथ ताजीम के साथ किसी से, किसी की तरफ, किसी चीज पर या किसी की तरफ मुतवज्जो होना, किसी से वाबस्ता होना, अपने आप को बंद कर लेना, अपने इरादे से रुकना, यह है इतकाफ। आकिफीना, इतकाफ भी इसी की फैमिली का है, और मोतकिफ हो जाना, इतकाफ जो लोग करते हैं, ठीक है। वर रुकाई ये आप पढ़ ही चुकी हैं, रा काफ आयन रका, रुकू से है, इसके मानी क्या है? आजी से झुकना, रुकू करना, आजी से झुकना, ये नमाज का एक रुकन है। इसी तरह सुजूद है, सीन जीम दाल सजद से, सजदा करना, झुकना इबादत के लिए, कि अपनी जो पेशानी है, अपनी जो नाक है, इंसान किसी के आगे नहीं झुकाता, तो अल्लाह के आगे जमीन पर टेक दी जाए, तो सुजूद जो है ये सजदा की जमा है। सीन जीम दाल इसका रूट वर्ड है, और सजदा यस जुदू से ये इसम फाइल है, और साजिद और इसकी जमा मुकसर है सुजूद। वैस कौला इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, रब्बिज अल हाजल बलदा, हमारे रब बना दे इसको शहर, बलद जो है वो शहर के लिए लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। आमिनन अमन, पीस, वर्जुक और रिस्क दे, रिस्क के मानी आप पढ़ी चुकी हैं, इल्म के अलावा, खाने के अलावा इल्म भी, और हर तरह की नेमत के लिए रिस्क का लफ्ज आता है। हम लोग सिर्फ खाने को रिस्क समझते हैं, इल्म है, कोई हुनर है, कोई महारत है, कोई सलाहियत है, सबके लिए लफ्ज आता है। आलहू इसके घर वालों को है ना, और आलहू जो इस शहर के बाशिंदे हैं। और आप पहले ये पढ़ चुकी हैं कि एक लफ्ज है अहल और एक है आल, है ना, पढ़ा था ना आपने, तो अहल और आल में क्या फर्क है कि आल जो है वो कहते हैं घर वालों के अलावा जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसके लिए भी वो आता है, जैसे आले फिरौन, और अगर हम कहेंगे कि अहले फिरौन तो उससे मुराद उसके घर वाले हैं। आप ये मिसाल याद रख सकती हैं। आले इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपकी जो उम्मत के लोग हैं, और अगर कहेंगे अहले इब्राहिम तो उनके घर वाले मुराद हैं। तो मैं चाहती हूं कि इस तरह के फर्क अब आपको क्लियर होते चले जाएं। आलहू मिनस समाराती, ये भी आप पढ़ चुकी हैं, सा मीम रा समर, और वैसे फल के लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन हर चीज का फल, फैक्ट्री का फल, इसी तरह फल जो हम खाते हैं वो, या दरख्त का वो हिस्सा जो खाने के काबिल है, टहनी भी हो सकती है, पत्ते भी हो सकते हैं, फूल भी हो सकता है, तो हर चीज जिसको हम खा सकें, समरात उसका, जैसे जॉब का फल तनख्वाह है, ये भी फल है, तो हर तरह की बड़ी वुसत में ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। मन आमना मिनहुम, जो उनमें से ईमान ले आए, बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर। आला कहा वमन कफरा, और जो कोई इनकार करे, फाउमत्ते हूँ तो मैं उसको मता दूंगा, फायदा दूंगा। मीम ता आयन, इसके मानी है फायदा, मता, इसी से कहते हैं कि तमत्तो। हज जो है एक होता है ना, हज किरान, एक हज इफ़राद और एक हज तमत्तो। तो हज तमत्तो में आप क्या करते हैं कि आप उमरा भी करते हैं और हज भी करते हैं एक ही एहराम के साथ, है ना, फायदा उठाते हैं। तो ये है मीम ता आयन, मता, और मता फायदा देना, ठीक है। कलीलन थोड़ा सा, काफ लाम लाम, सुम्मा अस्तर रहू, फिर मैं उसको जो है वो घसीटूंगा। अस्तर रहू द्वाद रा रा, किसी को तकलीफ पहुंचाना, असद में द्वाद रा रा है, ठीक है। अब तोए भी आपको नजर आ रही है, इसी से इस्तरारी कैफियत के लिए भी आता है ना, किसी को मजबूर करना, मजबूरी की कैफियत, हाजतमंद होना, और इस्तरारी कैफियत ऐसी बेकरारी की कैफियत होती है जिससे इंसान बहुत ही मजबूरी और परेशानी में होता है, बड़ी तकलीफ में होता है। तो हराम कब हलाल होता है? जब इंसान इस्तरारी कैफियत में हो, जिंदगी की बजाय मौत के करीब हो। वैसे तो आमतौर पर जिंदगी के करीब होता है ना, तो वैसे इसका फिर हमें क्या पता चला कि रूट वर्ड क्या है, द्वाद रा रा, जरर भी है ना, तकलीफ, तो ये उसी से है कि किसी को तकलीफ जो है वो पहुंचाना। आप यहां पे एक नुक्ता अगर समझ सकें कि था तो द्वात रा रा, ठीक है, ये बाबे इफ्तियाल से है, असल में ये लफ्ज था हमजा द्वात तोए रा रा, इस तरह रा, यस तरेरू, और बाज अवकात क्या होता है कि कायदे से हट कर एक्सेप्शन आती है कि बाबे ताल में ता की बजाय जायद हरफ ता लगा दिया जाता है। ठीक है, यहां पे भी इस तर्रा था, ता थी, तो एक ही बजाय क्या था, ता थी, तो उसकी बजाय इस तर्रा की बजाय इस तर्रा लग गया। किसी को नुकसान वाले और नापसंदीदा काम पर मजबूर कर देना। ठीक है, तो अगर आपको ये यानी अगर समझ में आ गई बात तो बहुत अच्छी है, ना आए तो ये आपको पेपर में वैसे नहीं आएगी। आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको ये बता दूं, एक नुक्ता है कि असल में ये ता था और ये बाजू का चेंज हो जाता है, ता से ये तोआ बन गया, तो किसी को उसकी नापसंदीदा हालत पर मजबूर करना। ठीक है, तो अगर जो नई चीज हो, अच्छी चीज हो, उसको सुनकर जो क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, है ना। और अगर समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, कि पेपर में तो आना ही नहीं है, है ना, तो इससे तसल्ली हो जाती है। और इला अजाब बिन्नार, आग के अजाब की तरफ, बेसल मसीर, और कितना बुरा है वो ठिकाना। बेसा के मानी क्या है, बहुत बुरा, है ना, और इसका ऑपोजिट क्या है, नेमा, कितना अच्छा है, शाबाश, नेमा कितना अच्छा है। और मसीर, मीम फादरा, मसीर जो है यानी मिसर, यूं देखें तो शहर को भी कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि इसका रूट वर्ड जो है स्वाद या रा भी है, सारा। इसके मानी क्या है, जैसे होने की जगह ठिकाना, सारा यसीरु। तो मिस्र में भी क्या करते हैं कि हम शहर की तरफ लौट कर ही जाते हैं ना, मिस्र भी तो शहर है ना, कि लौटने की जगह जहां जाते हैं। वाइज यरफाऊ, और जब वो बुलंद कर रहा था, यरफाऊ का रूट वर्ड क्या है, रफाइन, रफा बुलंद करना, ऊंचा करना। इब्राहिम, अब यहां पे मीम पर पेश आ गई है, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कर रहे थे ना, अल कवायदा, कवायद जो है इसका रूट वर्ड है काफ आयन दाल, इसके मानी है बैठना, बैठ रहना। जो दीवार की बुनियाद होती है उसको भी अलकायदा कहते हैं, क्योंकि बुनियाद नीचे बैठी हुई होती है और इमारत को उसके ऊपर खड़ा किया जाता है। इसी तरह आप जब कुरान पढ़ते हैं तो नूरानी कायदा, कायदे से बुनियाद बनती है, बिल्कुल स्टार्ट लिया जाता है ना, इसी से कवायद, रूल्स रेगुलेशन, तो गोया के बुनियाद बहुत अहम चीज के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना। और अब क्या हुआ कि ये गाली बन गई, हालात बदले तो क्या हुआ, होती आई है कि अच्छों को बुरा कहते हैं। तो आप देखें कि ये कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ और किस मानी में हुआ, और हर चीज की बुनियाद के लिए जो है वो ये चीज इस्तेमाल की जाती है, जैसे नूरानी कायदा है, या फिर ये कि दीवार के नीचे जो बुनियाद होती है उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी से है कवायद, यानी बुनियादें, दीवारें खड़ी, नीचे से जो बुनियादें रखी जा रही हैं। और आप देखें, बुनियादें जितनी मजबूत होती हैं, जितनी गहरी होती हैं, जितनी मुस्तहकम होती हैं, जितनी उनके अंदर पत्थर किंकरी चीजें डाली जाती हैं, उतनी ज्यादा वो इमारत देर पा और अच्छी होती है। मिनल बैदी व इस्माइलू, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम पर भी पेश आई है, गोया कि दोनों ही ये काम करने वाले थे। ठीक है, कर रहे थे, रब्बना ए हमारे रब, रब्बना ए हमारे रब, ना जो है हमारे के लिए है। तकब्बल, तकब्बल जो है इसके मानी क्या है, कबूल करना, इसका रूट वर्ड क्या है, काफ बा लाम, एहतमाम से कोई चीज कबूल करना, क्योंकि इसके ऊपर शद आ गई है और ये अमर का सीगा है। कबूल कर, मिन्ना हमसे, इन्ना का अंतर समीउल अलीम, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है, समी भी है और अलीम भी है, खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला। रब्बना ए हमारे रब, वजअलना और बना दे हमको, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैन का क्या मानी है,
दो
मुसलमान, माशाल्लाह। और अगर होता मुस्लिमीन, सब मुसलमान, मुस्लिमीन सब मुसलमान, और मुस्लिमैन
दो
मुसलमान, तो कैसे आपको पता चल रहा है कि ये दो हैं, मीम के ऊपर जबर है, ये बात भूलनी नहीं है, ये तस्मिया जरूर आपके पेपर में आना है, ये मैं पेपर आउट करती जा रही हूँ, देख लें फिर, है ना, तस्मिया जरूर पेपर में आएगा, क्योंकि مسلمین اور مسلمین، تو کہتے وہ ایک ہی طرح کا لکھا تھا، سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ مجھے آتا تو تھا ویسے، ہے نا؟ اس سے کیا ہوتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے. نہیں، غلطی نہیں کرنی. میم پر زبر ہے تو دو ہیں مسلمین، اور اگر میم کے نیچے زیر ہے تو مسلمین سب مسلمان، اور اگر وہ مسلمون تو یہ بھی جمع ہے سب کے لیے، اور اگر وہ مسلمان دو ہوں گے، دو بھی تسنیہ ہے. میم کے بعد الف آ رہا ہے، مسلمان ہے. تسنیہ اگر الف والا آتا ہے نا، جیسے اس نون کے نیچے زیر ضرور آتی ہے، مسلمان مسلمین، اور جو جمع ہوتی ہے مسلمینا اور مسلمونا، جمع کے دونوں سیغوں پر نون پر ویسے زبر ہوتی ہے. اگر وہ کسی وجہ سے نہ آئی بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن عام طور پہ ہوتی ہے زبر. ٹھیک ہے، مسلمینا مسلمونا اور مسلمین اور مسلمان، یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتن جماعت گروہ، مسلمتن مسلمان ہو، لکا تیرے لیے. تو امتن بھی آپ پڑھ چکی ہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف میم میم، اوم سے ہی ہے. مسلمتن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین لام میم، شاباش. وہ ارینا اور دکھا ہم کو، ارینا جو ہے اس کا روٹ ورڈ وہی را حمزہ یا، دیکھنا کسی چیز کا ادراک، خواہ آنکھوں سے ہو یا غور و فکر سے، کسی بات پر غور کرنے کے لیے بھی آتا ہے نا یہ. ارائیت الذی ینہا عبدن اذا صلی، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو کہ جب وہ اس کو روکتا ہے، جب وہ نماز کے لیے جو ہے وہ اٹھتا ہے، ایک ایسے بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کہ ارائیت الذی، قرآن میں بار بار یہ لفظ جو ہے آپ پڑھتے ہیں، تو کسی بات پر غور کرنا، ارا یرا. تو یہاں پر کیا ہے کہ ارینا، دکھا ہم کو، اسی سے ریا بھی ہے، نمائش دکھاوا. اسی سے لوگ رویا، رویا کے معنی کیا ہے؟ خواب کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے. لیکن آپ مجھے جو ہے وہ رویا میں وہ آتی ہے نا، تو وہی جو چینج ہو جاتا ہے، تو یہ ہے ارینا، دکھا ہم کو. مناسکنا، مناسکنا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین کاف. اس کے معنی ہیں دھونا، پاک کرنا، نیک بننا. جب آپ کپڑے کو دھوتی ہیں، اپنے آپ کو دھوتی ہیں، کپڑا صاف کرتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے، وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے نا. اپنے آپ کو دھوتی ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، کپڑے پہ گندگی لگی اس کو دھوتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. تو زاہد بننا، نیک بننا، تو کپڑے کو دھو کر پاک کرنا، اس کے لیے نسک کا شوب، کپڑا پاک ہو گیا. اسی سے یہ لفظ جو ہے عبادت اور تکبر اللہ، اسی سے یہ لفظ عبادت اور تقرب اللہ پر دلالت کرتا ہے. تقرب قرب سے ہے، اللہ کے قرب کے کام، ایسے کام جس سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں. تو عبادت کے طریقوں پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عبادت کے لیے اور عبادت کے جو طریقے ہیں نا، ان پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے مثلا قربانی کے جانور کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نسیکا. اسی طرح منسک طریقے کو بھی کہتے ہیں، جو عبادت کے طریقے ہیں قربان. اسی طرح جو ہے وہ مناسک حج کے طریقوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا. تو منسک اگر آتا ہے تو مراد کیا ہے کہ یہ اسم ظرف ہے، اور اس کی جمع مناسک، عبادت کرنے کے مقامات، یعنی وہ جگہ جہاں پہ عبادت کرنی ہے تو اس کے مناسک کیا ہیں، اس کے جو ہیں وہ طور طریقے کیا ہیں. تو عبادت جو ہے اس کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، جس میں خاص طور پہ جیسے قربانی کا جانور ہے، حج کی عبادت ہے، اور بھی جو چیزیں ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. مناسک حج آپ نے سنا ہوگا کہ مناسک حج، حج کے طریقے، تو اس کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ارینا مناسکنا، اور ہمیں سکھا حج کے طریقے. فتب علینا، اور جو ہے وہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر کر، ہے نا. تو توب ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، لیکن اگر اس کے ساتھ اللہ کی پریپوزیشن آ جائے تو اللہ کا توبہ قبول کر لینا، یعنی اللہ سے درگزر کی جب ہم معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ جو ہے وہ کیا کرے کہ معاف کر دے. انکا انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، وبعث اور بھیج، با عین سا باس، اس کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، بھیجنا، اسی سے بعثت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے نا، بعثت۔ فیہم ان میں، رسولن رسول، منہم انہی میں سے، یتلو تلاوت کرے، علیہم ان پر، تو یتلو جو ہے اس کے معنی تلاوت کرنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم جو ہے اس کو اس پر اس کو فالو کرنا بھی ہے، اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ آیاتی کا اپنی آیات کو، تو آیات جو ہے لغت کے اعتبار سے آیات لفظ جو ہے یہ نشانی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ لفظ خاص طور پہ اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز پر دلیل لائی جا سکے، اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز پر دلیل لائی جا سکے۔ مثلا آسمان زمین کی ہر چیز آیت ہے، دلیل ہے نا، اللہ کی نشانی ہے، عام شخص یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو کائنات کی جو نشانیاں ہیں نا، یونیورسل جو بھی ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی آیت ہیں، آیات ہیں۔ اسی طرح ہر چیز خدا کی قدرت اور حکمت ہے، اس کی مختلف صفات، یہ بھی ایک آیت ہے، دلیل ہے۔ اسی طرح جو معجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیے، وہ بھی آیت ہیں، آیات ہیں۔ اسی طرح قرآن مجید کا الگ الگ جو جملہ ہے، یہ بھی آیت ہے نا۔ تو آیت کیا ہے؟ نشانی، سائن۔ جیسے مثلا آپ کوئی بھی بات کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں، جیسے یہاں کے بچوں کو خاص طور پر ہم جو کوئی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل دیں، وہ کہتے ہیں ایسے ہی نہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ جیسے ہم لوگ ہر چیز پر حرام کے بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہوتی، ناپسندیدہ ہو سکتی ہے، مکروہ ہو سکتی ہے، حرام نہیں، لیکن جب لا علمی لوگوں کو کہتے ہیں یہ حرام ہے، تو آپ مجھے دلیل، تو ان کو دلیل نہیں آتی نا۔ دلیل کے جیسے ہمارا جو بھی سینگ ہے یا ایکشن ہے یا جو بھی بیہیویئر ہے، اس پہ دلیل آنی چاہیے ہمیں، اور دلیل کہاں سے ملنی چاہیے؟ قرآن سے، پھر حدیث سے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسوا سے، پھر صحابہ کے اقوال سے۔ تو کیا ہے کہ ان کو آیات تیری سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی۔ تو یعلم کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم، علم سے ہے۔ اور اگر معلم ہو، لام کے نیچے زیر آئے معلم، تو معنی کیا ہے؟ سکھانے والا۔ اور اگر معلم آئے تو جس کو سکھایا جا رہا ہے، سیکھنے والا، ٹھیک ہے، یہ یاد ہے نا بات، معلم اور معلم، یہ میں نے آپ کو بورڈ پہ بھی لکھ کر بتائی تھی، یہ اسی طرح سے ہے کہ وہ یعلمہم الکتاب، کہ وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمت، اور حکمت کی۔ ہا کاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس سے مراد ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ دانائی، دانائی، اور کوئی چیز جو بہت ہی اچھی ہو، بہت ہی مناسب ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور حکمت جو ہے، یہ اس کو بھی کہتے ہیں، جیسے کوئی فیصلہ کن بات ہو، کوئی حکیمانہ بات ہو، کوئی حکیمانہ بات بتانا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ حکمت کی صفت اور صلاحیت جیسے کسی شخص کے اندر ہو، تو ایسی حکیمانہ بات ہوتی ہے کہ معاملہ جو ہے نا وہ سنبھل جاتا ہے۔ جیسے مجھے اس وقت واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، ہے نا، تو اس وقت کیا تھا کہ اہل مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا، خانہ کعبہ کے دروازے آپ پر بند کر دیے، اور آپ تو قربانی کا جانور بھی لائے تھے، تقریباً 1000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ اب آپ نے صحابہ سے کہا کہ جو ہے نا قربانی کریں اور احرام کھول دے، صحابہ جو تھے وہ جھوم کے تو کھڑے تھے، اور ایسا رسول اللہ کی زندگی میں بہت کم ہوا ہے نا، نہ ہونے کے برابر کہ آپ نے کسی کو کچھ کہا ہو اور وہ خاموش کھڑے ہوں، کیونکہ وہ رنج میں تھے، وہ غم میں تھے۔ ایک تو وہ یہ تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، اور انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، تو پھر یہ طواف کیوں نہیں ہوا؟ پھر دوسری بات یہ کہ ہم پوری وہ تیاری سے آئے تھے تو ان کو روک لیا گیا۔ تو ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے آتے ہیں خیمے میں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ سے مشورہ کرتے ہیں، اور آپ نے بڑی حکیمانہ بات کی، آپ نے کہا کہ آپ اپنا احرام اتاریے اور قربانی کرنی شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے جب یہ مشورہ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام اتارا اور قربانی کی، اور جو ہی صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اور اس کے بعد اب کرنا شروع کر دیا, فوراً سب نے اپنے حرام اتارے اور قربانیاں کرنے شروع کر دی. تو حکیمانہ بات کو کہتے ہیں کہ معاملے کو ٹال دے. اور یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اس سے مراد حدیث ہے, حکمت سے مراد حدیث ہے, سنت ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اس کی کہتے ہیں کہ اس میں بڑا وزن ہے, کیونکہ جو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہمیں ملتی ہے تو وہ کہیں سے نہیں مل سکتی. وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کا تزکیہ کرنا. تو تزکیہ یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکی ہیں, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ شاباش. زال کا وہ بھی ہے اور زال کا فیا بھی ہے. اس کے معنی میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ پھلے پھولے, بڑے نشو نما پائے, اور یہ بھی ہے کہ اس کو ڈیکوریٹ کرنا, اس کو خوبصورت کرنا, اس کو سنوارنا, دونوں باتیں ہیں. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, بے شک آپ ہی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. تو عزیز جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی غالب کے ہیں. جیسے اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے حقیقت کیا ہے کہ وہی غالب ہے. اور اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عزازا. یہ اسم مبالغہ ہے یہاں پہ نا, عزا یعزو اسم مبالغہ, غالبانہ, معزز ہونا. عزت بھی اسی سے ہے. عزت سے مراد ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان کو بڑا غلبہ اور قوت ہوتی ہے, اس کے پاس فوقیت ہوتی ہے. جیسے کسی کی اولاد بہت نیک ہو, سوسائٹی اس کی عزت کرتی ہے, تو یہ بھی تو ایک غلبہ ہے, قوت ہے نا, ٹھیک ہے نا. کسی کے پاس علم ہے, اس کے پاس بھی عزت ہے, اس کے پاس غلبہ ہے. تو اس طرح یہ وسیع معنی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن, قال إني جاعلك للناس إماما, قال ومن ذريتي, قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى, وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابٍ. وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم